تفسیر سورة الانفال آیت نمبر 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. فرمایا یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، یقیناً وہ ہم کو عاجز نہیں کر سکتے. یہاں پہ اصل میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور یہاں پر کفر کرنے والوں سے مراد وہ کفار قریش ہیں جو میدان بدر سے جان بچا کر نکل بھاگے تھے، اور نکل بھاگنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. فرمایا وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے ہیں. اللہ کی گرفت سے کون نکل سکتا ہے؟ اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہی بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ کافر ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ جائیں گے یا وہ بازی لے گئے، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے جیسے کافروں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ ڈھیر ہو گئے تھے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کفار کو دھمکی دی ہے، اور خاص طور پر یہ بات بتائی ہے کہ جو وہ کفر کر رہے ہیں، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، اللہ نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا ہے. اب وہ اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ اللہ سے بچ سکتے ہیں یا اللہ کے قابو سے نکل کر وہ باہر کہیں جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عاجز کا لفظ استعمال کیا گیا نا، انہم لا یعجزون، کہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے شکار جو ہے وہ قابو سے باہر نکل جائے اور پکڑا نہ جائے. تو کہا کہ ایسا نہیں ہے. پھر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 60، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگی تیاری کا حکم دیا ہے. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اور ہر حال میں جو ہے وہ تیاری میں رہتا ہے دشمن سے نمٹنے کے لیے. ہر حال میں، ہر زمانے میں اس کی بھرپور جنگی تیاری ہونی چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کوئی جنگی تیاری تو کی نہیں تھی، یہ خاص اللہ کا انعام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو فتح دی، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ملی. تو اب یہاں پر مزید مسلمانوں کو جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے ایک طرف وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے ایمان اور عمل جو ہے اس کے بلبوتے پر تیاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں کے مطابق فوجی طاقت، اسلحہ، ٹینک، جدید ترین جو جنگ کا سامان ہے اس کو بھی جو ہے وہ حاصل کرنے کی، فراہم کرنے کی کوشش کریں. فرمایا وَعِدُّ لَهُمْ، وَعِدُّ اس کے معنی ہے اور مہیا رکھو، تیار رکھو. لَهُمْ ان کافروں کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ جو تم سے ہو سکے. اب یہاں پر جو ہے مَا اسْتَطَعْتُمْ استطاعت سے ہے، تو اے بو عین جو کچھ تم کر سکو، مِنْ قُوَّتٍ قوت سے. یہاں پر جو قوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ قوت کے، قوت جو ہے وہ طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قوت سے مراد جو ہے وہ جیسے افراد کی تعداد کی قوت بھی ہے، جیسے مین پاور کے عددی قوت ہونی چاہیے، مین پاور ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ एक खास जो है उसके लिए तादाद होनी चाहिए। क्यों? जैसा मौका हो उसके मुताबिक। तो मुकाबले की कुव्वत, और दूसरे इसके बारे में कहते हैं कि अफराद की तादाद के साथ साथ जंगी सामाने, असलहा, सवारी, अपने बदन की वर्जिश, जंग के फन को सीखना। तो कुव्वत का लफ्ज इस्तेमाल करके जो है वो इस तरफ इशारा कर दिया कि ये कुव्वत जमाने, मुल्क, जगह के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि उस जमाने में असलहा तीर, तलवार, नेजे थे, बाद में बंदूक और तोप वगैरह का जमाना आया, और आजकल का दौर जो है वो बम का है, रॉकेट का जो है वो दौर है। तो कुव्वत में ये सब चीजें जो है वो शामिल है, और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस से भी पता चलता है, जैसे ये सही मुस्लिम की रवायत है, कि असली ताकत तीरंदाजी है, असल ताकत तीरंदाजी है। तो उस जमाने में आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर ये आयत पढ़ी, और उसके बाद जो है फरमाया कि असल ताकत तीरंदाजी है, असल ताकत तीरंदाजी है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा ने उकबा बिन आमिर से रवायत किया है। तो ये उस जमाने की बात है ना। तो इसी तरह जो है वो फिर मौके की मुनासिबत से जो है मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आपकी भी भरपूर जो है वो जंगी तैयारी होनी चाहिए। आज अगर मुसलमान जो है वो जलील हैं, मغلوب हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह असले की, सामान की, जंगी तैयारियों की कमी नहीं है, बल्कि इसकी असल वजह ईमान और अमल की कमी है, मुसलमानों के इत्तेहाद की कमी है। तो जब मुसलमान ईमानी लिहाज से मजबूत होंगे, कवी होंगे, तो फिर हर मैदान में मुसलमान जो है वो इंशाल्लाह आगे ही आगे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम काफिरों के लिए तैयार रखो जहां तक तुमसे हो सके, कुव्वतिन, ज्यादा से ज्यादा ताकत, व मिर रिबातिल खैली, वमिर रिबातिल खैली, और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े। रिबात का लफ्ज जो है वो रा बा तोए से है, रबत आप उर्दू में भी इस्तेमाल करती हैं कि मेरा राबता नहीं रहा, तो रबत के लफ्जी मानी होते हैं बांधना, मजबूत करना, किसी चीज को रस्सी से बांधना। तो फरमाया कि क्या करें कि वो बांध कर रखे, अल खैली, घोड़े। तो घोड़े जो है क्यों बांध के रखने हैं? घोड़े उनके मुकाबले के लिए तैयार करने हैं। जैसे मुसलमानों की जो है एक तरफ एक जो है स्टैंडिंग आर्मी हर वक्त रेडी होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसे वैसे हालात हों, दुश्मन हमला करे, तो बवक्ते जरूरत फौरन जंगी कार्रवाई की जा सके। और उसके साथ साथ जो है वो घोड़े जो है वो बांध कर रखें। तो इसके मानी है, घोड़े बांधने के मानी ये है कि जिहाद की नीयत से जैसे घोड़े पालना, उनको बांधना, या पले हुए घोड़ों को जमा करना। यहाँ पे फिर वही बात के घोड़ों का जिक्र किया, क्योंकि उस जमाने में जो है वो किसी मुल्क और कौम की फतह करने में सबसे ज्यादा मुअस्सर और मुफीद घोड़े ही थे। तो आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनको घोड़ों के बगैर फतह नहीं किया जा सकता, जैसे पहाड़ी इलाके वगैरह हैं। और वियतनाम में अमरीका की शिकस्त की एक बड़ी वजह ये थी कि वियतनाम के लोग घोड़ों के जरिए जो है वो नकल मकानी कर रहे थे, और अमेरिकन जो आर्मी थी इसके पास जो है असलहा बहुत अच्छा था, टैंक भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वियतनाम, वियतनाम के वो इलाके जो बड़े तंग थे और जहाँ पे घोड़े जा सकते थे और कोई चीज नहीं जा सकती थी, तो वहां पे जो है वो अमेरिकन के पास जो है वो घोड़े नहीं थे कि वो घोड़ों के जरिए वहां पे पहुंच सकते। तो बहरहाल अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि घोड़े जो हैं उनको भी तैयार रखा जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि घोड़ों की पेशानी में अल्लाह ताला ने बरकत रख दी है। तो दरअसल यहाँ पर जो है मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो बेदार मग़ज़ होते हैं, और उनका असल मकसद ये कि वो इस्लाम और मुसलमानों का दिफा करें, और ये दिफा जो है, ये डिफेंड जो है, हर जमाने में, हर कौम में, हर जगह में, हर इलाके में वहां की जरूरत के मुताबिक होगा। और कभी ये दिफा और जिहाद हथियार से किया जाता है, कभी ये जबान से और जैसे स्पीच के जरिए, और कभी जो है ये तहरीर के जरिए, मीडिया के जरिए, प्रोपेगंडे के जरिए। तो अगर काफिर जो है वो कुरान, इस्लाम या मुसलमानों पर हमला करें, या जैसे कुरान को जलाने की बात थी अभी पिछले दिनों, इससे पहले आपने जो है वो नऊज बिल्ला, आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना था कि उनकी के लिए कार्टून डे ये लोग मना रहे थे। तो बहुत अच्छा किया कि इस्लामी ममालिक ने उस वक्त जो है वो इसका इंटरनेट और वेबसाइट और फेसबुक और ऐसी चीजों का जो था उस वक्त उन्होंने जो है वो बाइकॉट किया था। और फिर आप यूट्यूब पे देखते और आप वेबसाइट पे जाते मीडिया में कि बहुत से मुसलमानों ने उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत जो है वो स्पीचेस की, तहरीरें लिखी, बताया कि ही वाज द मैन, कि वो ऐसे आदमी थे जो कि पीस के लिए आए थे, उन्होंने पीस का पैगाम लोगों को दिया, और वो नहीं थे जो कि लोग उनके बारे में कह रहे हैं ना। तो इसी तरह अब जैसे पिछले ये 11 सितंबर को आपने सुना ही था कुरान को जलाने की बात भी, तो यही वो मौके हैं कि जिस मौके पर जो है वो जबान के जरिए, कलम के जरिए, जो है वो तहरीर के जरिए, तो मौके की मुनासिबत से जो है वो आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वो इस्लाम का और कुरान का जो है वो दिफा करें। तो जैसे आज भी इस्लाम के बारे में, जैसे कभी निकाब पर बैन की बात आती है, कभी जो है वो जिलबाब पर पाबंदी की बात आती है, या फिर जो है कभी जो है वो मुसलमानों को जहां भी कुछ होता है तो सबसे पहले मुसलमानों का नाम जो है वो आता है, तो इस वक्त फिर जरूरत होती है कि मुसलमान जो है वो अपना डिफेंड करें। तो ये नहीं है कि हाथ पांव बांध कर खड़े हो जाएं, जबान बंद करके खड़े हो जाएं, या अपनी तहरीर जो है उसके जरिए मुसलमान अपना डिफेंड ना करे। तो आप सोच लें कि इस वक्त मगरिब की दुनिया में रहते हुए जब इस्लाम हर तरफ से जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इस वक्त आपको फिर क्या करना है? आप फिर इस इतनी आयत का तर्जुमा सुने, फरमाया, और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले, ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो। क्यों ऐसा क्यों करना है? तुरहे बुना बही, तुरहे बुना रा हा बा से है, और इसके मानी है कि डराओ तुम, धाक बिठाओ तुम, खौफ ज्यादा करो तुम। किनको खौफ ज्यादा करना है? बही यानी ये जो कुछ भी आप तैयारी करेंगे, या जबान के जरिए, कलम के जरिए, तलवार के जरिए, मौके की मुनासिबत से जिस तरह जो है वो इस्लाम पर हमला की अगर होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो मुसलमान जो है उस वक्त फिर इस्लाम का डिफेंड करेंगे, तहफ्फुज करेंगे, मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। और ये तैयारी का मकसद क्या है? तुरहिबूना बिही, कि इसके जरिए से तुम डराओ। अदुवल्लाह, अदुवल्लाह, अदुवल्लाह व अदुवकुम, अल्लाह के और अपने दुश्मनों को। तो ये सारी तैयारी का मकसद अल्लाह के दुश्मनों को खौफ सजा करना, मरूब करना और डराना है, और उसके साथ ही अपने दुश्मनों को। तो हमारे दुश्मन कौन है? जो इस्लाम के दुश्मन है। वह आखरीन अमिन दूनहिम, और दूसरे उन दुश्मनों को भी खौफ सजा करो, ला तालमूनहुम, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाहु यालमहुम, मगर अल्लाह इनको जानता है। तो जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं उन सबको डराना मकसद है। और यहाँ पे जो आखरीन मिन दूनहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमहुम, तो ये कौन दुश्मन है? ये उन दुश्मनों की तरफ जो है वो इशारा है जो कि खुफिया साजिशें करते थे। यहाँ पे दरअसल जो है मुसलमानों के दो दुश्मनों का जिक्र किया जा रहा है। पहले दुश्मन कौन है? पहले दुश्मन जो थे वो कुरैश थे, जो कि मुसलमानों से जंग करते थे। और आप देख लें कि हर मौके पे कुरैश के लोग जो है वो खुद सबसे पहले आए जंग करने के लिए। तो पहले उनको कहा कि तुरहिबूना बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम, फिर व आखरीना मिन दूनहिम, जो दूसरे हैं उसके अलावा, ला तालमूनहुम, तुम उन्हें नहीं जानते, अल्लाहु यालमहुम, अल्लाह उनको जानता है। तो ये कौन थे? ये वो थे जो छुपे हुए थे, जैसे यहूदी जिनकी खुफिया साजिशें थी, रेशा दवानियां थी, या वो कबाइल थे जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआयदा हो चुका था कि वो कुरैश जो है उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो कुरैश के साथ मिल गए, या फिर वो यहूदियों के साथ। फिर इस तरह एक और ग्रोह था मुनाफिकीन का, ये अपनी मुनाफ़त के अंदर बराबर साजिश में रहते थे। सूरह तौबा में भी आप मुनाफिकीन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह और बैरूनी ताकतें थी उस जमाने में भी, रूमी थे, ईरानी थे, गस्सानी थे। तो यहाँ पे मुसलमानों को जो है इशारा किया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद के अंदर बहुत से मुसलमान तुम्हारे दुश्मन होंगे और हो सकते हैं। तो उन हालात को सामने रखते हुए आप मंसूबा बंदी करें, ये मत समझे कि बस ये कुरैश वाले हैं और ये हमला कर रहे हैं और ये आए और ये चले गए। बल्कि क्या है कि इस्लाम के जो भी दुश्मन हैं, जिन्हें अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, लेकिन तुम उनकी तैयारी के लिए, उनके मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार रखो। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाही युवफ्फा इलैकुम वअन्तुम ला तुज़लमून, और अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा। वअन्तुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे साथ जुल्म हरगिज़ ना होगा। आयत के इस हिस्से में सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 60 के आखिरी हिस्से में तीन बातें कही गई हैं। पहली बात जो है वो ये कही जा रही है कि अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे, तो अब अल्लाह की राह में जो खर्च करना है इससे क्या मुराद है? क्योंकि अब दीन इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, दीन इस्लाम जो है उसकी हिफाजत के लिए जब जंगी सामान जमा करना है या जंग करनी है तो उसमें माल की जरूरत पेश आती है। अब माल जो है फिर उसमें खर्च किया जाएगा। तो कहा कि जो माल भी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, जंगी तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पे इन्फाक की हौसला अफजाई की जा रही है। कोई ढीला पैसा, कोई पैनी, कोई रुपया जो है जो तुम खर्च करोगे तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी पाई पाई का हिसाब जो है वो दिया जाएगा। तो पहली चीज ये है कि सोच लो कि क्यों कर रहे हो। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, मिन शैइन यानी कुछ भी, थोड़ा ज्यादा, जितना भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे। दूसरी बात, युवफ्फा इलैकुम, तो तुम्हारी तरफ उसका पूरा पूरा अजर जो है वो आएगा, पूरा पूरा नेकियों का अजर जो है अल्लाह ने जो मुकर्रर कर रखा है वो तुम्हें दिया जाएगा। तीसरी बात, अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म ना होगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो ये आयत नंबर 61 है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलह के अहकाम जो है वो बताए हैं। वइन जनहु लिस्सलमी, और अगर वो माइल हो सलामती की तरफ, जीम नून हा इसके मानी झुकना है, अगर जीम पर पेश हो और जुनाह, ला जुनाह अलैकुम, तो ये गुनाह के लिए आता है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं। अगर जीम पर फतह हो, जबर हो, तो इसके मानी जो है बाजू के होते हैं, पहलू, परिंदे का पर। तो यहाँ पे जीम पर जबर है, तो अब आप देखें कि आप अपने बाजू को हिलाते हैं तो कहाँ से, जैसे ये जो बाजू का जोड़ है यहीं से कंधा जो है वो हिलता है और एक तरफ को माइल होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जनाहू का लफ्ज जो है ये माइल होने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वह इन जनाहू, और अगर दुश्मन जो है ये माइल हो, आमादा हो, लिस सलमी सलामती की तरफ, सीन पर जबर हो या सीन के नीचे जेर, सलम हो या सिल्म, दोनों तरह ये सुलह के मानी में इस्तेमाल होता है कि अगर कुफार किसी वक्त सुलह की तरफ झुके तो क्या करें, फजनह लहा, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी जो है वो सुलह के लिए इनकी तरफ झुक जाइए। वा तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्यों, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, यकीनन वही है सुनने वाला और जानने वाला। अब आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को बैनुल अक्वामी मामलात में एक पॉलिसी बताई है कि जंगी पॉलिसी मुसलमानों की क्या होनी चाहिए, कि अगर फरीक सानी जो है, दुश्मन जो है वो सुलह करना चाहता है, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि अल्लाह के भरोसे पर बहादुरी और दिलेरी के साथ जो है वो बेतकल्लुफ सुलह कर ले। सुलह के लिए बड़े वे हाथ जो है मुसलमान उससे इनकार ना करें, कि बाज़ुकात ये होता है ना कि वो नेक नियति के साथ सुलह नहीं करना चाहते, गद्दारी का इरादा रखते हैं। तो अब किसी की नीयत तो मालूम नहीं हो सकती, तो अब यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि उनकी जो भी नीयत हो, अगर वो तुमसे ये कहते हैं कि हम सुलह करना चाहते हैं, तो ऐ मुसलमानों सुलह के लिए जो बढ़ने वाले हाथ हैं, उठने वाले हाथ हैं, तो तुम वो जो है वो कबूल कर लो, अपने हाथ आगे बढ़ाओ, अपनी इखलाकी बर्तरी जो है उसको साबित करो। क्योंकि लड़ाई के लिए उठने वाले हाथ को अपनी कुव्वते बाजू से तोड़कर फेंकना है, लेकिन जो सुलह के लिए उठे हुए हाथ हैं उनको भी आगे बढ़कर जो है वो कबूल करना है। तो यहाँ पे मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम्हारा किरदार जो है वो क्या होना चाहिए, कि वतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो दरअसल ये अल्लाह ही की जात है जो कि हर तरह के हालात से, मसाइल से, परेशानियों से जो है वो निकालती है। फिर इसके बाद जो है आयत नंबर 62, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बता रहे हैं कि जो दुश्मन है उनके बारे में बता रहे हैं, वही यूरीदू, और अगर वो इरादा रखते हैं, वही यखदाऊ का, कि वो आपको धोखा दे, अगर वो आपको धोखा देने की नीयत रखते हो, फइन्ना हस्बकल्लाह, तो अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफी है। अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि मुसलमानों तुम्हारा असल भरोसा जो है वो अल्लाह पर होना चाहिए। तो बैनुल अक्वामी मामलात में अगर वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश भी करें तो तुम उसकी परवाह ना करना, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। ये है असल बात। फइन्ना हस्बकल्लाह, ऊपर इसी बात को कहा वतवक्कल अलल्लाह, यहाँ पे कहा फइन्ना हस्बकल्लाह وبالمؤمنين, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी ताईद की। अब आप देखें कि आयत नंबर जो 62 है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह का एक बड़ा एहसान है उसका जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर और मोमिनीन पर जो एहसानात किए हैं, इनमें से बड़ा एहसान क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनीन के जरिए मदद की, वो रसूल अल्लाह के मुहाफिज और मुआविन बन गए, उनके दस्ते बाजू बन गए। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह ही तो है, अय्यदका, कि उसने मदद की, बिनसले ही, अपनी नुसरत से, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो कुव्वत दी। अय्यदका का मतलब क्या है, कुव्वत देना, ताईद करना, कुव्वत दी, ताईद की, बिनसर ही, अपनी मदद से, वबिल मोमिनीन, और मोमिनीन के जरिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप नबूवत के इब्तदाई जमाने पर गौर करें, कहा जा रहा है कि आप कुछ भी नहीं थे, आप कमजोर थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, उनको कवी कर दिया, वबिल मोमिनीन, और मुसलमानों के जरिए से, कि मुसलमानों की एक जमात, सहाबा की एक जमात जो थी उन्हें मुयस्सर आ गई। अब यहाँ पर जो है एक दूसरे एहसान जो है उसका जिक्र किया जा रहा है आयत नंबर 63 में, 63 में दूसरा एहसान क्या है कि मोमिनीन पर अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि इस्लाम से पहले उनके दरमियान दुश्मनी चली आती थी, वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक दूसरे के जान निसार बन गए, आपस में सदियों की जो पुरानी दुश्मनियां थी वो खत्म हो गई, और अब वो आपस में रहीम और शफीक बन गए, बहम प्यार और मोहब्बत करने वाले बन गए। और ये जो मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की, दुश्मनी की बजाय मोहब्बत, रकाबत की बजाय जो है वो शफकत, तो ये अल्लाह की खास मेहरबानी थी। सूरत आल इमरान आयत 103, उसमें भी आप पढ़ चुकी हैं कि इज़ कुंतुम आदा अनफा अल्लाफा बैना कुलूबेकुम, और यहां पर भी यही बात है फरमाया, वो अल्लाफा बैना कुलूबेहिम, اور مومنین کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. وَأَلَّفَ يُؤَلِّفُ اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جوڑ دینا, الفت ڈالنا, تالیف کرنا, جوڑ دینا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دل جو تھے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تم خرچ کر دیتے. انفقتا, انفقتا کے معنی ہے کہ خرچ کر دینا. ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے, جمیعاً سارا کا سارا, ما الفتا بین قلوبہم تو وہ سارا کا سارا بھی اگر تم جو ہے وہ خرچ کر دیتے, تم روئے زمین کی ساری دولت بھی اللہ کے راستے میں, اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان لوگوں کے دل جڑ نہیں سکتے تھے. ما الفتا بین قلوبہم تو ان کے دل آپس میں جڑ نہیں سکتے تھے. تو کس نے دل جوڑے؟ ولکن اللہ الف بینہم مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل آپس میں جو ہے وہ جوڑ دیے. انہ عزیز حکیم یقیناً بڑا زبردست اور دانا ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ اس بھائی چارے اور الفت اور محبت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کر دی تھی, ان کو ایک مضبوط جتھا بنا دیا تھا. آپ خاص طور پہ اوس اور خزرج کے قبائل کو دیکھیں کہ ان کی دشمنیاں بڑی مشہور تھیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. مشہور جنگ بواس کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی جس میں اوس نے خزرج کو اور خزرج نے اوس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو ہے وہ تہیہ کر لیا تھا. تو اتنی شدید دشمنی جو صدیوں کی تھی اللہ تعالیٰ نے 2-3 سال کے اندر اندر اس کو گہری دوستی میں تبدیل کر دیا. یہ کس نے کیا؟ یہ اسلام کی برکت تھی, یہ اللہ کا احسان تھا. یہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ اسلامی جماعت تھی یہ, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دم ان کے دل جو تھے وہ آپس میں بدل دیے. قرآن کی نعمت, اسلام کی نعمت, مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیے. لوگ دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تو جوڑ نہ سکتے. انہو عزیز حکیم یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یہاں پہ ایک بات اور پتہ چلتی ہے, آپ بھی دیکھیں کہ اسلام کا رشتہ, قرآن کا رشتہ آپس میں کیسے جو ہے وہ محبت اور بھائی چارے کی فضا کو پیدا کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ دو آپس میں غیر محرم ہوتے ہیں, جب شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, تو میاں بیوی بنتے ہیں اور آپس میں ایک مودت محبت کے رشتے میں آپس میں جو ہے یہ جڑ جاتے ہیں. تو یہ محبت اور رحمت کس نتیجے میں ملتی ہے؟ یہ اسلام کے نتیجے میں ملتی ہے, یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اسی طرح انما المؤمنون اخوة تو مومن بھائی بھائی ہیں. تو اخوت کی بنیاد ایمان ہے, بھائی چارے کی جو فضا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دراصل ایمان ہے, قرآن ہے, اسلام ہے. یہ نہیں ہے کہ نسل ہو, ملک ہو, ذات ہو یا کوئی اور وجہ ہو. بے شک اللہ بڑا زبردست دانا اور حکیم ہے. تو یہاں پر جو ہے یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ ہی, اللہ رب العزت ہے جس کا یہ تعارف ہے کہ وہ عزیزن بھی ہے اور وہ حکیمن بھی ہے. عزیزن حکیمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر ڈالتا ہے, اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. پھر جو آیت نمبر 64 اور 65 ہے, 64-65, اس میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. فرمایا یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہیں گی نبی تو کیا کہیں گی؟ ساتھ ہی درود آپ پڑھیں گی صلی اللہ علیہ وسلم. حسبک اللہ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتباک من المؤمنین اور تمہارے اطاعت کرنے والے اہل ایمان. ومن اتباک من المؤمنین اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ رب العزت. اصل چیز کیا ہے؟ یا ایہا النبی, اے نبی, حسبک اللہ, کافی ہے آپ کے لیے اللہ. ومن, من کے معنی ہے اور جو کوئی, اتباک آپ کی پیروی کریں گے, من المؤمنین مومنوں میں سے. تو جو ایمان لائے ہیں, جو مومن ہیں, ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ ہی جو ہے وہ کافی ہے. اب آپ دیکھیں بار بار بڑے سخت حالات ہیں اور ان میں ایک ہی بات مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے کہ आप जो हैं इस बात की फिक्र ना करें। यानी जैसे दुश्मन आपको कहता है कि मुआयदा कर लें, तो आप सुलह का मुआयदा कर लें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह ताला इन हालात को आपके फेवर में कर देगा। जैसे आप सुलह हुदैबिया को ही याद कर लें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारी अताअत करने वाले जो पैरोकार हैं, जो मोमिन हैं, उन सब के लिए अल्लाह ही काफी है। या अय्युहन नबीयू, आयत नंबर 65 सूरत अल अनफाल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिद अल मोमिनीना अल क़िताल, मोमिनों को जंग पर उभारो। यहाँ पर हर्रिद का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, हा रा द्वाद, इसके मानी होते हैं उभारना, तरगीब देना कि ऐसी हलाकत और तबाही से बचाना, क्योंकि जब तरगीब दिलाई जाएगी तो नतीजा क्या निकलेगा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर जो है तुम तबाहो बर्बाद जो है वो हो सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हर्रिद का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और मुफस्सरीन कहते हैं कि तहरीज का जो लफ्ज है ना यहाँ पे, जैसे हर्रिद, और हर्रिद में तहरीद का जो मानी है तरगीब में मुबालगा करना, खूब रग़बत दिलाना, खूब शौक दिलाना। जैसे गज़वाए बदर के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दिलाई थी, और मुशरिकीन अपनी भारी तादाद और भरपूर वसाइल के साथ आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी जन्नत में जाने के लिए खड़े हो जाओ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। एक सहाबी थे, उमेर बिन हमाम रजी अल्लाह अनहो, उन्होंने कहा, क्या उसकी चौड़ाई, जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस पर बख बख बखिन बखिन उन्होंने कहा, जिसके मानी है वाह वाह, खूब खूब खूब। उन्होंने खुशी का इजहार किया और ये उम्मीद जाहिर की कि मैं भी जन्नत में जाने वालों में से हूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम भी उसमें जन्नत में जाने वालों में से हो जाओगे। चुनाचे उन्होंने अपनी तलवार की मयान तोड़ दी, खजूरें निकाल कर खाने लगे, फिर जो बच गई वो हाथ से फेंक दी और कहा कि इनके खाने तक अगर मैं जिंदा रहा तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी, जिंदगी तवील हो जाएगी। आगे बढ़े और दादे शजाद देने लगे, हत्ता के जो है वो फिर शहीद हो गए। इसे सही मुस्लिम ने जो है वो रवायत किया है। तो यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि मोमिनों को दुश्मनों के खिलाफ जंग पर उभारें। अब आप देखें कि गज़वे बदर के मौके मौके पर काफिर जो है वो मुसलमानों के सर पर खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ आगे हैं। तो अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए कि फिर उनको भी उनका भरपूर मुकाबला करना चाहिए, कि जब भी जो है वो कोई ऐसा मौका आए तो मुसलमानों को हाथ पांव बांध कर खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर उस वक्त दुश्मन का जो है वो मुकाबला करना चाहिए। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मोमिनों को जंग पर उभारो। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पे तो अलल किताल का जो है वो लफ्ज है, और वैसे क्या है कि मौके की मुनासिबत से, अगर दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप उसका डिफेंड करें, अगर दुश्मन तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए, प्रोपेगंडे के जरिए, असले के जरिए, जिस भी तरह से दुश्मन जो है वो कर रहा है, तो उसका मुसलमानों को भी अपना जो है वो इस्लाम का और अपना डिफेंड करना चाहिए। आगे जो है बताया जा रहा है कि इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू मियातैन, अगर तुम में से 20 आदमी साबिर होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे। अब आप देखें, इन यकुम मिनकुम, अगर होंगे तुम में से, ये इन यकुन जो है, यकुन का वही रूट है काफ वो नून, और कभी ये काना, कभी कानू, कभी यकुन कुन। तो अगर होंगे तुम में से इशरूना, तो अशारा 10 को कहते हैं और इशरून जो है इसके मानी 20 के होते हैं। तो अगर तुम में से जो है वो 20 आदमी होंगे, साबिरूना सबर करने वाले, मुस्ततिल मिजाज, मजबूत, बहादुर, यगलिबू मियातैन, तो वो गालिब आ जाएंगे 200 पर। मिया जो है वो 100 को कहते हैं मियातुन, और मियातैन ये 200 को कहते हैं। ये जो या नून है ना आखिर में आपको नजर आ रहा, ये تثنیہ کی دو کی علامت ہے، کبھی الف نون آتا ہے آخر میں، کبھی یا نون آتا ہے، تو یہ دو کی تثنیہ کی علامت ہے، تو میں اتینی وہ دو سو پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر ہوں گے تم میں 1000، صبر کرنے والے مستقل مزاج بہادر 1000 ہوں گے، یغلبوا وہ غالب رہیں گے، الفینی 2000 پر. اب دیکھو الفن آپ نے پڑھا نا، تو الفن 1000 ہے، اب الفین آخر میں آپ کو یا نون نظر آ رہا ہے نا، یہ پھر دو کی علامت ہے، تو الفین 2000 پر 1000 غالب آئیں گے. کیسے غالب آئیں گے؟ اپنی مضبوطی کی وجہ سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اہل ایمان اور کفار کے درمیان جو ہے وہ کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت جو ہے وہ پہلے تو کہا کہ 1 اور 10 کی، کہ چونکہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ تازہ تازہ جو تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، پہلے کہا کہ 1 اور 10 کی نسبت، کہا کہ پھر تم میں کمزوری آ گئی، اس لیے 1 اور 2 کی نسبت جو ہے وہ قائم کر دی. تو یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر جو پچھلا حکم تھا وہ بہت گراں گزرا، کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں کے لیے اور 20 مسلمان 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں. اب کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور کرنا ناگزیر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی نسبت کیا ہوگی، اب یہاں پہ اس میں کمی کر کے کہا کہ 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا کر دیا، اسے صحیح بخاری نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. تو اگر ایسی ہو تعداد تو پھر تمہارا جہاد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، جنگ بڑے زوروں پر تھی، اور جو سپہ سالار تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میسج بھیجا کہ ہمیں جو ہے پیچھے سے مدد بھیجیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو ان کے پاس صحابی تھے مسلمان تھے، اس میں سے انہوں نے 2 کا انتخاب کیا اور کہا کہ ان میں سے 2-3 کا انہوں نے انتخاب کیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ 1 جو ہے نا 1 1000 کے برابر ہے. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ یہ ہے مسلمانوں کے ایمان کی، عمل کی، صبر کی، ثابت قدمی کی جو ہے وہ مثال. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک جنگ میں 1000 مسلمانوں نے 80000 کافروں کا مقابلہ کیا تھا، اسی طرح جنگ موتا کے موقع پر 30000 جنگ موتا کے موقع پر مسلمان 3000 تھے اور کافر 1 لاکھ، تو یہ نسبت بھی 1 اور 10 کی نسبت سے زیادہ بنتی ہے. تو اس طرح ہمیں کئی ایسے موقع ملتے ہیں، کیونکہ جب ایمانی قوت پوری طرح پختہ ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان جو ہیں تھوڑے بھی زیادہ کافروں پر جو ہے وہ بھاری ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، 200 بڑی تعداد ہے نا، تو یہ مسلمانوں کو بہت مشکل لگا. پھر اللہ نے مومنوں پر یہ فرض کر دیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے، اور پھر یہ بھی کہا کہ کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے، تو یہ 1 اور 2 کی نسبت ہو گئی. لیکن اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جو صبر کرنے والے ہیں. پھر آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک، 67 سے لے کر 69 تک ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور اصل بات کیا تھی کہ جنگ کے غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیونکہ جب مسلمان جو تھے وہ جنگ جیت گئے تو جو 70 कैदी थे जो कैदी बना लिए गए थे, तो उसके बारे में आपने मशवरा किया। इस सिलसिले में आपके सामने से ही मुस्लिम की रवायत को, हदीस को पेश करती हूँ, जिसके रावी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, कि जंगे बदर के बाद जब कैदी कैद कर लिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर व उमर से पूछा रजी अल्लाह अन्हुमा कि तुम्हारी इन कैदियों के बारे में क्या राय है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चचा के बेटे और खानदान के लोग हैं, मेरी राय यह है कि इनसे फिदिया ले लिया जाए ताकि कुफार के मुकाबले में हमें कुव्वत हासिल हो और शायद अल्लाह इन्हें इस्लाम की तौफीक दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ए इब्ने खत्ताब, तुम्हारी राय क्या है। उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी राय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से मुख्तलिफ है। मेरी राय यह है कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दें ताकि हम इनकी गर्दनें उड़ाएं। अकील को अली के हवाले कीजिए कि वो इसकी गर्दन उड़ाएं, मेरे हवाले फलां कीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, इसलिए कि ये लोग कुफर के सुतून और सरगने हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की राय से इत्तफाक किया, उनकी जानिब माइल हुए और मेरी राय से इत्तफाक ना किया। कहते हैं, दूसरी सुबह मैं क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बैठे रो रहे हैं। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोस्त दोस्त कौन थे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो, कि ये किस वजह से रो रहे हैं, ताकि अगर मुझे रोना आए तो मैं रोऊं, अगर ना आए तो मैं आपकी वजह से रोने वाली शक्ल ही बना लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि जो तुम्हारे साथियों ने कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ने के सिलसिले में मुझसे बात की थी, मेरे सामने इनका अजाब पेश किया गया जो कि इस दरख्त से भी ज्यादा करीब था, चुनाचे अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, आयत नंबर 70 सूरत अनफाल, मा काना ले नबीन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द। मा काना ले नबीन, जायज नहीं है किसी नबी के लिए, अन यकूना लहू के हो उसके लिए असरा कैदी, हमजा सीन रा इसके मानी होते हैं कैदी बनाना, असीर कैदी को कहते हैं ना, तो असरा जो है वो इसकी जमा है, तो किसी नबी के लिए ये जायज नहीं है। ये कूना लहू का मतलब है कि उसके कब्जे में हो, असरा कैदी, हत्ता यहां तक, युस्खेना फिल अर्द कि वो कसरत से खून बहा दे जमीन में। यहाँ पे युस्खेना का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, सा खा नून इसका रूट है और इसके मानी है किसी चीज को उठाकर इसके वजन का अंदाजा करना, खून रेजी में हद से गुजरना, कत्ल के दौरान सख्ती का तसव्वुर करना, बेदरेख कत्ल करना, जितना मुमकिन हो उतना जो है वो कत्ल करना। तो हत्ता युस्खेना फिल अर्द, यहां तक कि वो जमीन में जो है वो खून रेजी करे। अब आप देखें कि युस्खेना, तो इस खान के मानी क्या सामने आए, किसी की कुव्वत और शौकत को तोड़ने में मुबालगे से काम लेना, किसी को कत्ल करने में जो है वो बेदरेख कत्ल करना, और फिल अर्दे के मानी है के दुश्मन की कुव्वत को, ताकत को जो है वो खाक में मिला देना। तो ये क्यों कहा कि किसी नबी के लिए ये जेबा नहीं है कि इसके पास कैदी हो जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे, क्योंकि गजवाए बदर का मौका था और काफिर जो थे पूरे के पूरे जो कुरैश के लोग थे वो गजवाए बदर में अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो थे वो आए थे। अब कुछ तो मारे गए, अब उनमें से 70 जो थे वो जो गिरफ्तार हुए उनके मुतालिक जब मशवरा हुआ कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए, तो सहाबा की दो राय सामने आ गई, एक ही राय, कुछ सहाबा की राय ये थी जिसमें हजरत अबू बकर भी थे कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। अब फिदिया लेकर छोड़ने की बजाय जो दूसरे सहाबा थे जैसे हजरत उमर थे, इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह अनहो के अलावा हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अनहो भी थे, तो उनकी राय ये थी कि इनको जो है वो मारा जाए, क्योंकि जब उनको जो है वो उनसे फिदिया लिया जा रहा था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अनहो को देखा कि उनके चेहरे पर नागवारी के जो है वो असरात हैं, तो आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये वो मौका था कि जहां पे इनको जो है वो पकड़कर खत्म किया जा सकता था और इनको दुश्मन की ताकत को मिटाया जा सकता था, तो उसको मिटाने की बजाय जो है इन इनसे फिदिया लेके जो इनको छोड़ा जा रहा है, तो मुझे इनका ये अमल जो है वो पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर और उन सहाबा की राय से जो है उसमें इत्तफाक किया जिन्होंने कहा था कि इनको जो है वो मार दिया जाए, इनसे फिदिया ना लिया जाए, क्योंकि अगर एक दफा शुरू में ये मार दिए जाएंगे तो दोबारा ये इस्लाम के खिलाफ जो है वो सर नहीं उठाएंगे। यहाँ पे वो इशारा है हत्ता युस्किना फिल अर्दी, कि जब तक जमीन में इनको खूब अच्छी तरह जो है वो खत कुचल ना दिया जाए। तुरीदूना अरादा दुनिया, क्या तुम लोग दुनिया के फायदे चाहते हो? अब आप देखें कि यहाँ पे आयन रा दुआत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और इसके मानी जो है वो चौड़ाई के हैं। चौड़ाई का दरअसल मतलब क्या है कि दुनिया के फायदे, दुनिया दुनिया का तालिब बनना, तो क्या तुम दुनिया के फायदे चाहते हो? वल्लाहु युरीदुल आखिरा, हालांकि अल्लाह चाहता है आखिरत, अल्लाह के पेशे नजर तो आखिरत है। वल्लाहु अजीजुल हकीम, और अल्लाह गालिब और हकीम है। अब आप देख लें कि दुनिया के फायदों से क्या मुराद है। मसलन पहली जो है वो मुसलमानों से गलती क्या हुई थी कि एक तरफ जो है वो तिजारती काफिला आ रहा था, तो बड़ा एक काफिला था, और उस वक्त भी जो है वो मुसलमानों से क्या गलती हुई थी कि उन्होंने जो है वो जो लश्कर आ रहा था मक्का से, जो लश्कर आ रहा था मक्का से अबू जहल की सरकर्दगी में, तो उसका मुकाबला करने की बजाय अबू सुफियान की सरकर्दगी में जो काफिला था तिजारती काफिला, मुसलमानों का मशवरा ये था कि उसको जो है वो लूट लिया जाए। फिर दूसरी बात क्या हुई कि जब गजवाए बदर में कुरैश की फौज भाग निकली तो मुसलमानों का एक बड़ा गिरोह गनीमत लूटने में लग गया, कुफार के आदमियों को पकड़ पकड़ कर बांधने लगा। बहुत कम आदमी थे जिन्होंने दुश्मनों का कुछ दूर तक ताकुब किया, तो उस वक्त मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी थी कि पूरी ताकत से उनका ताकुब करते ताकि कुरैश की ताकत का उसी रोज खात्मा हो जाता। और फिर तीसरी बात ये कि जब उनको कैद कर लिया गया तो अब फिदिया लेकर छोड़ने की बात आ गई, फिर पैसे फिदिया, तो फिदिया लेने की बजाय इनको खत्म करना चाहिए था। तो तुम क्या चाहते हो? तुरी दून अरद दुनिया, तुम लोग दुनिया के फायदे चाहते हो। अल्लाह क्या चाहता है? वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुल हकीम, हालांकि अल्लाह के पेशे नजर आखिरत है और अल्लाह गालिब है, हकीम है। तो यहां पर जो है इसके फिर माने क्या है, इस सारी बात का निचोड़ ये है कि मुसलमानों का शेवा दुनिया तलबी की बजाय क्या है, आखिरत होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है ये चाहता है कि नबी और अहले ईमान आखरत के तलबगार रहें, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह की ये मर्जी है कि हर वक्त वो जो है वो सामने रहनी चाहिए। हालांकि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सामने आखरत ही थी, लेकिन ये कि वक्ती तौर पर जैसे कुछ ऐसा फैसला हो गया तो उस पर जो है वो तंबीह की जा रही है। वल्लाहु अजीजुल हकीम, اور اللہ غالب اور حکیم ہے. آیت نمبر 68 لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں اس کی وجہ سے تم کو بڑی سزا دی جاتی. لولا کتاب من اللہ سبق, اگر نہ لکھا ہوا ہوتا اللہ سے سبقہ پہلے سے ہی, کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی یہ لکھ نہ دیا گیا ہوتا. اب کیا چیز ہے جو اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھ نہ دی گئی ہوتی, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے, کیونکہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا, تو کہا چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا, تو اگر مسلمانوں نے غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں سے فدیہ لے کر جو انہیں چھوڑ دیا ہے تو ایک جائز کام کیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی مغفرت پہل لکھ دی تھی, اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر عذاب ہوتا. بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا, کیونکہ جب تک رسول جو ہے کسی امت میں موجود ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا. تو اگر یہ بات اللہ نے پہلے لکھ نہ دی ہوتی تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ عذاب آتا. تو بہرحال زیادہ تر رائے جو ہے وہ مالے وہ جو مال غنیمت تھا جو فدیہ تھا اسی کے بارے میں ہے کہ مال غنیمت پاکیزہ ہے, امت مسلمہ کے لیے حلال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات فرمائی, تو یہاں پہ بھی اس سے جو ہے وہ یہی مراد ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. فیما اخذ تم, جو فدیہ تم نے لیا تمہیں کیا ملتا؟ عذاب عظیم, بڑا عذاب ملتا. اب آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ جو فدیہ لیا گیا تھا اس سلسلے میں میں آپ کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کا میں واقعہ سناتی ہوں, کہ کیونکہ ان سے آپ کے چچا عباس سے بھی جو ہے وہ فدیہ لیا گیا تھا, تو اور صرف ایک سے ہی ایک کسی ایک سے ہی نہیں فدیہ لیا گیا تھا, بلکہ اس وقت جتنے بھی قیدی تھے ان سے فدیہ لیا گیا اور اس کی مقدار 4000 درہم فی قسط تھی, یعنی ایک قیدی سے 4000 درہم جو تھے وہ لیے گئے تھے. اور ان قیدیوں میں جو آپ کے چچا حضرت عباس تھے ان سے آپ کے داماد ابو العاص نوفل بن حارث اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب یہ سب تھے جن سے جو ہے وہ فدیہ لیا گیا تھا. رسول اللہ نے حضرت عباس سے فدیہ جمع کروانے کو کہا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, پس جو کچھ مال تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ. فَكُلُوا پس کھاؤ, مِمَّا غَنِمْتُمْ جو کچھ تمہیں فدیہ ملا ہے, جو مال غنیمت ملا ہے, حلالًا طَيِّبًا یہ تمہارے لیے حلال ہے اور پاک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو, تو اصل چیز اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اصل میں جب اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کی اور محاسبے کی آیات نازل ہوئی تو اس وقت جو صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے فدیے کے مال سے کراہت محسوس کی, تو یہ آیت نمبر 69 نازل ہو گئی. اس میں فرمایا کہ یہ حلال ہے, یہ پاکیزہ ہے, اس لیے آپ اسے کھا سکتے ہیں اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے, کہ اگر آپ سے کوئی غلطی بھی سلسلے میں ہوئی ہے تو اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آپ کو وہ بات پتہ ہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ میرے لیے حلال کر دیا گیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا مگر امت مرحومہ کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا، کیونکہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر حلال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، یہ بات پہلے ہی لکھی جا چکی تھی. اور مال یہ جو آیات ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ عذاب الہی بالکل سامنے آ چکا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے روک دیا، اگر عذاب آ جاتا تو بجز عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ کے کوئی اس سے نہ بچتا. ان کی رائے نہیں تھی نا، باقیوں کی رائے تھی کہ فدیہ لیا جائے، ان کی رائے یہ تھی کہ فدیہ نہیں لینا چاہیے بلکہ دشمن کو مارنا چاہیے اور ان کا زور جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. تو اگر ایک دفعہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا، ان کی قوت شوکت ختم ہو جائے گی، تو دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے. تو اصل مقصد ان کی طاقت کو کچلنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 70 ہے، آیت نمبر 71 ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جب غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی قل کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسرا، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. دو باتیں کہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے. ان یعلم اللہ، اگر معلوم ہوا اللہ کو، فی قلوبکم خیرن کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے، یؤتکم وہ دے گا تم کو خیرن زیادہ، مما اخذ منکم جو کچھ تم سے لیا گیا ہے. تو فی پرسن ایک قیدی سے کتنا لیا گیا تھا؟ 4000 درہم جو تھا وہ لیا گیا تھا. فرمایا کہ تمہیں جو ہے پھر اللہ تو تم سے لیا نا اسے بڑھ چڑھ کر دے گا. دوسرا کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آخرت میں تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. تو حقیقت میں یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، من قبلو اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پس قبضے میں دے دیا ان کو، اور اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. تو ان کی اسی خیانت کی وجہ سے اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، اور اللہ جو ہے دانا اور حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ آیت نمبر 69 ہے، یہ آیت نمبر 70 اور 71، اس میں اللہ رب العزت نے ان قیدیوں کا ذکر کیا ہے جو قیدی فدیے کے لیے روک لیے گئے. اب یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری نیتیں صاف ہیں تو تمہارے لیے کوئی کھٹکا نہیں، تم فدیہ دو اللہ تمہیں بڑھ چڑھ کر دے گا، جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر تمہیں دے گا. اور دوسری بات یوں کہی کہ اگر جو ہے وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ابھی تو یہ فدیہ دے کے جا رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن پھر ان کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کریں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں یا مسلمانوں پر حملہ کریں، تو اگر یہ دوبارہ جو ہے وہ خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو یہ خیانت کر چکے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول کا ساتھ نہیں دیا، اللہ का साथ नहीं दिया, और किसी की सजा के तौर पर अल्लाह ने जो है वो ये किया कि गज़वा बदर में ये मुसलमानों के काबू में आ गए, रसूल अल्लाह के काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम है। अब आप देख लेंगे यहाँ एक बात हमें और पता चलती है, और वो ये कि ये जो कहा गया ना, ये जो आयत नंबर 70 में है कि जो फिदिया लिया जा रहा है इससे अल्लाह कई कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देगा, तो एक राय ये है इस बारे में कि इससे बेहतर तुम्हें चीज अल्लाह देगा कि तुम कबूल इस्लाम कर लोगे। कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देगा से मुराद क्या है कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की कबूल इस्लाम की तौफीक दे देगा। हजरत अब्बास उस वक्त कैदियों में थे, फिर ये मुसलमान हो गए, इसके बाद अल्लाह ने उन्हें दुनियावी मालो दौलत में खूब नवाजा, और वो खुद भी इस वाक्य को बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब मुझसे जो है वो जब मैं गज़वा बदर के मौके पर मैं गया तो मैं मक्का से अपने साथ तकरीबन 700 गुनी सोना लेकर चला चला था। बहुत ज्यादा वो उन्होंने सोना अपने साथ लिया था, ये जो गन्नी या जो है ये कोई पैमाना है, और वो इसलिए लेकर गए थे कि जरूरत पेश आने पर कुफार के लश्कर पर खर्च कर सकें। लेकिन अभी उन्होंने खर्च नहीं किया था, उस सोने के साथ गिरफ्तार हो गए। अब फिदिया की बारी आई, रसूलल्लाह ने कहा कि आप फिदिया दें, और तो उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं। आपने कहा वो जो आप सोना लेकर आए थे, तो वो बड़े हैरान हुए क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपना फिदिया भी दें और अपने दो भतीजे अकील बिन अबी तालिब और नौफिल बिन हारिस का फिदिया भी आप दें। तो हजरत अब्बास ने कहा कि अगर इतना माली बार मुझ पर डाला गया तो मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो फकीर हो जाऊंगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया अच्छा वो जो माल आप लेकर आए थे मक्का से रवाना होते वक्त वो कहाँ पे है, आपकी बीवी जो उम्मुल फजल ने आपको दिया था वो कहाँ है। तो हजरत अब्बास ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैंने वो माल मैं लाया हूं, क्योंकि रात थी तारीक रात और तन्हा मैं वो मतलब कुछ मैं ले आया और कुछ वो अपनी बीवी के सपोर्ट कराए थे, कोई तीसरा आदमी नहीं था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने उसकी पूरी तफसील बता दी। हजरत अब्बास के दिल में ये सुनकर रसूल अल्लाह के सच्चे रसूल होने का यकीन हो गया। पहले ही उनके दिल में यकीन तो था लेकिन कुछ शुभात थे, लेकिन इस मौके पर वो दर हकीकत उसी वक्त मुसलमान हो गए। इनका बहुत सा रुपया कुरैश मक्का के जिम्मे कर्ज था, इन्होंने अपने मुसलमान होने का ऐलान नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐलान करते तो उनका सारा रुपया पैसा जो है वो मारा जाता। फतह मक्का से पहले इन्होंने रसूल अल्लाह से इसकी इजाजत ली थी कि मक्का से हिजरत करके मदीना आ जाएं, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि आप वहीं पे ठहरे रहें और हिजरत ना करें। और अब इस मौके पर फिर इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, ये सच्चे मुखलिस मोमिन बन गए। और यहाँ पे इसी चीज की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है कि जो माल तुम खर्च करोगे हो सकता है अल्लाह इसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर दे। और ये खुद कहा करते थे जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो बाद में कहते थे कि मुझसे 20 ऊकिया सोना फिदिये में लिया गया, यानी फी कस 4000 दिरहम इनसे लिया गया ना। कहते हैं इस वक्त मेरे 20 गुलाम हैं, मुख्तलिफ जगहों में तिजारत का काम कर रहे हैं और किसी का कारोबार 20000 दिरहम से कम नहीं है, और मजीद इनाम यह है कि मुझे हाजियों को आबे जमजम पिलाने की खिदमत भी जो है वो मिल गई है और मैं हाजियों को आबे जमजम पिलाता हूँ। और सारे अहले मक्का के माल में, सारे अहले मक्का के पास जो माल है ना, उस माल के मुकाबले में मैं ये आबे जमजम का पानी हाजियों को पिलाना इसको ज्यादा अच्छा समझता हूँ। और गज़वा बदर के कैदियों में कुछ और लोग थे वो भी मुसलमान हो गए थे क्योंकि उनके दिल में भी एक खटक थी और बाद में वो मुसलमान हो गए थे। तो यहाँ पे दरअसल इसी चीज की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। ये जो है ना खयानत ना कहीं करें, खयानत का मतलब क्या है कि फिर कहीं कुफर करके इनकार करके और मुसलमानों की इस्लाम की मुखालफत ना करने लग जाए। अब ये जो आयत नंबर 72 है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो जो सहाबा हैं इनकी तीन किस्में जो हैं बताई हैं। पहली किस्म मुहाजरीन की है, दूसरी अंसार की है, और तीसरी वो लोग जो के जिन्होंने हिजरत नहीं की थी। فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. نمبر ایک, جن لوگوں نے ایمان قبول کیا, ایمان لائے. نمبر دو, وہاجروا, اور ہجرت کی, مہاجرین. وجاہدوا, اور انہوں نے جہاد کیا. باموالہم وانفسہم, اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. کیوں جہاد کیا؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اب آپ دیکھیں کہ نمبر ون درجے کے جو مسلمان تھے یہ کون تھے؟ یہ مہاجرین تھے, جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے میں جو ہے وہ سبقت دکھائی, سب سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کیا. تو اس زمانے میں جو مسلمان تھے, اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو دینی مرتبے کے اعتبار سے تین قسموں میں تقسیم کیا ہے, آیت نمبر 72 کی روح سے. اور پہلا درجہ ہے مہاجرین کا, جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. دوسرا درجہ ہے یہ والذین ابوا ونصروا, یہ جو ہے نا ابوا, تو اس کا روٹ ہے حمزہ و یا, آوا, بنا لینا, آوا, آباد کرنا, ماوا بھی اسی سے ہوتا ہے نا. تو یہاں پر جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ والذین آووا نصروا, اور وہ جنہوں نے جگہ دی. آوا کا مطلب کیا ہے؟ پناہ دی, جگہ دی. و نصروا, اور ان کی مدد کی. کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے کیا کیا؟ پہلی کام یہ کیا آوا کہ ان کو جگہ دی, ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی. نمبر دو, و نصروا, اور ان کی مدد کی. اولئک بعضہم اولیاء بعض, یہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں, یہی دراصل ایک دوسرے کے جو ہے وہ بھائی ہیں. اب آپ دیکھ لیں, آپ ذرا جو ہے وہ تصور کریں کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان نے افغانیوں کو جو ہے وہ مدد دی تھی, زمین دی, اور ان کی جو ہجرت کر کے مہاجرین آ رہے تھے تو ان کی جو تھی وہ مدد کی تھی. پھر اسی طرح جیسے فلسطین ہے, اس پر حملہ ہوتا رہتا ہے, اور فلسطین کے مسلمان اگر ارد گرد کے مسلمان ممالک میں پناہ لیتے ہیں تو یہ مدینہ کا انصار کا کردار جو ہے پھر ادا کرنا ہے. اسی طرح کشمیر میں اگر حملہ ہوتا ہے اور مسلمان پاکستانی یا دوسرے مسلمان جو ہیں وہ ان کے لیے اپنا گھر بار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ پھر انصار کی یاد جو ہے ان کو تازہ کرنا ہے. تو ایک ہے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے والے, ایمان کی خاطر اپنے گھر, وطن, رشتہ دار, مال, تجارت سب کو چھوڑ کر جان مال کو قربان کرنے والے, وہ ہیں مہاجر. نمبر ون, نمبر ون پر ہیں. نمبر دو, پھر جو ان کو پناہ دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, انصار مدینہ. آج کے دور میں بھی بعض ممالک اور بعض لوگ انصار مدینہ کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ اولئک بعضہم اولیاء بعض. تو ولی کہتے ہیں دوستی کو, گہرے تعلق کو. تو ان کے درمیان جو ہے وہ دوستی ہے, ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے مواخات کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا تھا. یہاں پہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست. اب تیسرا گروہ ہے والذین آمنوا, اور رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے, ولم یہاجروا, مگر ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیئن حتی یہاجروا, تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ما لکم, نہیں ہے تمہارے لیے, من ولایتہم, ان کے ساتھ تمہاری کوئی ولایت نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے. یہ جو ولایت ہے نا عربی زبان میں, حمایت, نصرت, مددگاری, دوستی, قرابت, سرپرستی, سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کب تک؟ حتی یہاجروا, جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. फिर कहा कि वैनिस्तन सरू को, और हाँ अगर वो तुमसे मदद मांगे। ये जो लफ्ज है ना वैनिस्तन सरू को, तो असल में नून स्वाद रा के मानी तो आपको आते ही हैं कि इसके मानी होते हैं मदद के, और अगर उसके शुरू में अलिफ सीन ता लग जाए, जैसे यहाँ पे अलिफ सीन ता नजर आ रहा है ना आपको, नून सीन ता लग जाए या सीन ता लग जाए, तो इसके मानी होते हैं कोई चीज मांगना। तो अगर वो तुमसे जो है वो मदद मांगे फिर दीनी दीन के मामले में, फअलैकुमुन नसरु, तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी मदद करो। अलैकुम का मतलब है तुम पर लाजिम है, नसरु के तुम मदद करो, इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक, मगर ऐसी कौम पर कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान अगर अहद है फिर नहीं मदद करनी। मसलन अब कुछ मुसलमान थे हिजरत करके नहीं आए थे, जैसे मक्का में ही थे, तो अब मक्का के जो हिजरत ना करके आने वाले मुसलमान, जब उनको पता चल गया कि हमारा तो हमारे बारे में तो अल्लाह ने कह दिया कि इनसे तुम्हारा वलायत का कोई ताल्लुक ही नहीं, अब हम हिजरत करना चाहते हैं, अब हिजरत करने के लिए वो मदीना के मुसलमानों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदीना के मुसलमानों का मक्का वालों के साथ सुलह हुदैबिया का मुआहदा हो चुका था, तो अब वैसे तो मदद करना ऐसे मुसलमानों की जो मजलूम है जरूरतमंद है जरूरी है, लेकिन जिस इलाके में वो रहते हैं उन इलाके वालों से जो है वो दूसरे मुसलमानों का कोई मुआहदा हुआ हुआ है, तो फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। वैसे तो मदद करनी है लेकिन अगर मदद करना मुआहदे के खिलाफ हो जाए फिर उससे जो है वो रुक जाना है। तो यहाँ पे ये जो सहाबा तीसरी किस्म के हैं जो मुहाजिर और अंसार के अलावा हैं, ये मुसलमान होने के बाद भी अगर अपने इलाके में अपने कबीले में मौजूद हैं, कहा कि ये तुम्हारी हमायत के विरासत के मुस्तहिक नहीं है। उस जमाने में जो मुआखात का रिश्ता कायम हुआ था उसमें हमायत में जो है वो विरासत भी साथ ही मुसलमान आपस में एक दूसरे के वारिस थे, बाद में जब विरासत का कानून नाजिल हुआ तो फिर जो है उसको मना कर दिया गया कि विरासत जो है फिर रिश्तेदारी की बिना पर जो है वो दी जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा है कि अगर ये मुसलमान जो है मुशरिकीन के खिलाफ तुमसे मदद मांगते हैं तो तुम इनकी मदद करो, लेकिन अगर ऐसी कौम के खिलाफ ये मदद चाहते हैं जिनकी जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है कि तुम जो है उनके खिलाफ जो है वो किसी की मदद नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें अपनी मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। यहाँ पे ये बात कही जा रही है, फअलैकुम नसरु, तुम पर लाजिम है कि मदद करो, इल्ला मगर नहीं मदद करनी, कब, अला कौम बैनकुम बैनहुम मिसाक, किसी ऐसी कौम के खिलाफ जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो, वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे देखता है। والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير, जो लोग मुनकर हक हैं वो एक दूसरे की हमायत करते हैं, तो जो काफिर हैं ये क्या है, بعضهم اولياء بعض, ये एक दूसरे के वली हैं एक दूसरे के दोस्त हैं, الا تفعلوه تكن فتنه في الارض, अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना फसाद उन कबीर और बड़ा फसाद पैदा होगा। अब यहां पे कहा जा रहा है कि काफिर तो एक दूसरे के वली और दोस्त हैं, एक दूसरे की हमायत करते हैं, अगर अहले ईमान इसी तरह आपस में ईमान वालों की हमायत नहीं करेंगे तो जमीन में फितना और फसाद पैदा होगा। तो दारुल कुफर में रहने वाले काफिर जो हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमानों को भी जो है वो ईमान की बुनियाद पर एक दूसरे की हमायत करनी चाहिए। तो मोमिन और काफिर जो हैं इनके दरमियान जो है वो दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ये जो आयत है इसी आयत से मुफस्सरीन ने ये उसूल भी निकाला कि एक मुसलमान किसी काफिर का और काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता, जैसे फिर हमें हदीस में भी यही बात जो है पता चलती है कि जो विरासत का जो कानून है उसमें भी जो है वो क्या फरमाया गया कि काफिर किसी मुसलमान का, और मुसलमान किसी काफिर का जो है वो वारिस नहीं बन सकता, क्योंकि क्या कहा कि वल्लजीना कफरु बादुहुम औलियाउ बाद, के काफिर ही हैं जो आपस में एक दूसरे के जो है वो दोस्त हैं, अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना और फसाद जो है वो पैदा होगा। अब जो आखिरी आयात है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान लाने वाले और हिजरत और जिहाद करने वाले इनकी हौसला अफजाई की है, इनके बारे में जो इनके फजाइल जो है वो बयान किए हैं, फरमाया वल्लजीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, नंबर एक जो लोग ईमान लाए, नंबर दो और जिन्होंने हिजरत की, नंबर तीन वजाहदू फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, ये कौन थे, ये मुहाजरीन थे। अब दूसरी तरफ अंसार हैं, वल्लजीना आवा नसरू, वो लोग आवा जिन्होंने जो है वो जगह दी, जिन्होंने पनाह दी, व नसरू और मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही वो मोमिन है जो कि सच्चे मोमिन है, लहुम मगफिरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए बख्शिश है व रिज़्क़ुन करीम और बेहतरीन रिस्क है। मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज ये है कि अल्लाह जो है वो उनके गुनाहों को माफ कर दे, उसका ऐलान कर दे, तो यहाँ पे यही जो है वो ऐलान किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इनके गुनाहों को माफ करने वाले हैं, और फिर माफ करने के साथ ही दूसरी अहम खबर क्या सुनाई जा रही है, वह रिज़्क़ुन करीम, कि उनके लिए अल्लाह के पास जो है वो बेहतरीन रिस्क है। ये मुहाजिर और अंसार जो है ना, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यही सच्चे मोमिन हैं, हुमुल मोमिनून हक्का। आप जरा तसव्वुर करें कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने कही, और जो अल्लाह कह दे फिर उसके सच होने में क्या शक हो सकता है। तो मुहाजरीन और अंसार की फजीलत, इनकी तारीफ, क्योंकि इन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों मालों के नजराने पेश किए, तो इनके एजाज, इनके दर्जात जो है वो बताए जा रहे हैं, बड़े बुलंद इनके दर्जात हैं, क्योंकि जो जितनी ज्यादा कुर्बानी करता है उतना ज्यादा उसका दर्जा जो है वो बुलंद होता चला जाता है। आप भी देख ले कि आप जो है यहाँ पर आई हैं तो आप किस लिए आई हैं, बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए, डॉलर के लिए, अच्छी जॉब के लिए, कि आपने यहाँ पे जो हिजरत की है वो किस लिए की, और यहाँ पे आप आई और आप अपना अपना जायजा लें, अपना अपना मुहासबा करें, मैं भी करूँ आप भी करें। और मक्का से मुसलमान जो हिजरत करके मदीना गए थे तो वो उन्होंने हिजरत जो थी वो क्यों की थी, और मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि अब भी हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह के दीन को बुला लें, कि अल्लाह ताला के दीन को जो है वो फैलाना है। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने, आप सोचें कि उनके लिए ये खुशखबरी दे दी कि वो सच्चे मोमिन हैं, नंबर दो, फिर उनके लिए एक और खुशखबरी कि उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, मगफिरत, नंबर तीन कि उनके लिए जो रिस्क है वो रिस्कुन करीम है। आपको पता है ना करम जो है वो अंगूर की बेल को कहा जाता है, पर अंगूर की बेल जो है उसके अंदर नफा बहुत पाया जाता है, और दूसरा जो है जो नफा होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी दो फायदे होते हैं कि अंगूर और अंगूर की बेल जो है वो मुख्तलिफ लिहाज से फायदा देती है और बहुत ज्यादा उसके अंदर फायदे होते हैं। आखिरी आयत जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वल्लजीना आमनू मिन बादु फहाजरू व जाहदू माकुम फाउलाइका मिनकुम, रहे वो लोग जो बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए, वल्लजीना आमनू मिन बादु, बाद में ईमान लाए, महाजरू और हिजरत कर ली उन्होंने, वजाहदू और जिहाद किया, माकुम तुम्हारे साथ, तो ईमान लाए और हिजरत करके आए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, फाउलाइका मिनकुम, तो वो लोग भी तुम्हारे साथ ही शामिल हैं। यहाँ पे आप देखें कि कितनी खूबसूरत बात जो है वो बताई जा रही है कि अब ये वो लोग हैं कि ये भी अब तुम्हारे साथ जो है वो शामिल हो गए, ये वो लोग हैं कि اب یہاں پہ یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت نے پہلے دو گروہ کے بعد اور تیسرے گروہ سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یہ ان سے پہلے ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے، اور پھر جو پہلے دو گروہ تھے ان کے ساتھ اب مل گئے ہیں. وجاہدوا معکم فاولئک منکم، تو یہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ جو آیت نمبر 75 ہے سورت الانفال کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک اہم جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور اہم اعلان یہ ہے کہ مواخات کی بنا پر، اخوت کی بنا پر جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتے. مواخات کی بنا پر جو پہلے تھا نا کہ مہاجر انصار کے وارث ہوں گے اور انصار مہاجرین کے، اب اس کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ جو ہے وہ سورت نساء کی آیت نمبر 33 کی روح سے، 33 کی روح سے وراثت کے اصل حقدار قریبی رشتہ دار ہی قرار پائے، اور مہاجرین اور انصار مواخات کی بنا پر جو ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ مہاجرین کی معاشی حالت اب بہت بہتر ہو چکی تھی. اب ویسے جو ہے وہ انصار اپنے بھائیوں کے لیے وصیت اور دینی بھائی چارے کے سلسلے میں مدد وغیرہ کر سکتے تھے، لیکن وراثت کا جو قانون تھا سورت نساء کا نازل ہو گیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا اولو الارحام کا آپ کو پتا ہے نا، راہ میم سے ہے رحم کے رشتے، یعنی رشتے داریوں کی بنا پر وراثت کی تقسیم ہوگی. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اس میں اولا کا لفظ بہت اہم ہے، اولا، اور اولا جو ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اولا کے معنی ہے قریب ترین. تو اولا جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ وہ زیادہ قریب ہیں. کون؟ جو رشتہ دار ہیں وہ مہاجرین اور انصار کا جو آپس میں ایمانی رشتہ ہے، تو اسلامی بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس میں مسلمان آپس میں مومن مومن ہیں، بھائی بھائی ہیں، لیکن دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. وارث کون ہوں گے؟ رشتہ دار. تو رشتہ داری کا جو تعلق ہے یہی قانونی حقوق کی بنیاد بنے گا. دینی بھائی جو ہیں ان کو دوسرے معاملات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، لیکن جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کے لحاظ سے رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. ان اللہ بکل شیئن علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے سورت الانفال، الحمدللہ سورت الانفال جو ہے یہ مکمل ہوئی، جس کی کل 75 آیات ہیں، اور جس کا انداز ہی بڑا زبردست تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے آغاز بھی اس سے کیا کہ یسألونک عن الانفال. اس سورت کا زیادہ حصہ جو ہے وہ، سورۃ الانفال کا زیادہ تر حصہ غزوہ تبوک کے بعد تقسیم مال غنیمت کے موقع پر نازل ہوا، اور سورۃ الانفال میں جو ہے وہ غزوہ بدر جو ہے اس پر جو ہے وہ تبصرہ کیا گیا ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں میں مال غنیمت کے بارے میں جو ہے وہ آپس میں جو جھگڑا ہوا تھا، تو غزوہ بدر پر تبصرہ بھی کیا گیا، مسلمانوں کی کمی کمزوریاں بھی سامنے آئیں، اور اس کے ساتھ جو ان کی مہاجرین اور انصار کی اچھی باتیں تھیں وہ بھی سامنے لائی گئیں. تو اصل چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. پوری سورت الانفال جو ہے اس کا جو ہے نچوڑ پھر کیا سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالی کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کا جب ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں، اور وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ وعدے کے پابند ہیں، صابر ہیں، ثابت قدم ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں. ये हैं जो कि अल्लाह को लोग जो है वो पसंद है, तो ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की मदद है और अल्लाह को मुनाफिकाना किरदार पसंद नहीं है। और साथ साथ आपने ये भी देखा कि ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे अल्लाह जो है राजी हो जाता है, जो कुरान को उसकी सही रूह के साथ समझते हैं, फिर अपनी जिंदगी में अपने शब रोज में जो है कुरान मजीद को जो है वो जारी और सारी करते हैं। तो अब आप देखें कि कुरान मजीद की ये वो अजीम शान सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने पहले मुसलमानों की खामियों की निशानदेही की है और साथ ही ये बात बताई कि गजवे बदर की फतह की असल वजह क्या थी, कि अल्लाह ने इसमें ताईद की थी, अल्लाह ने मदद की थी, और मुसलमानों को अपनी बहादुरी पर फूलना नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करनी चाहिए। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।